ओम शांति। फ्राइडे को आए थे सभी यहाँ? कब पहुंचे थे यहाँ? फ्राइडे को तो फ्राइडे तो सेट होने में ही लग गया होगा कि कंप्लीटली नया सोचने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, एक नया वाइब्रेशन, सात्विक भोजन, ज्ञान से ये एक अलग ही कॉन्फ्रेंस हो जाती है। फिर सैटरडे को ज्ञान सुनना शुरू किया, मेडिटेशन भी किया, आज संडे हो गया और कल परसों तक तो वापस जाने का भी दिन आ जाएगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बुरा कुछ है नहीं, तो बुरा लगने की कोई मर्जी नहीं है, तो वो वाला ऑप्शन तो है नहीं। लेकिन अब मंडे से पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये अच्छा फीलिंग जो है, ये एक अच्छी फीलिंग है, दिस इज अ वेरी प्योर फीलिंग। ये प्योर फीलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि हम एक पवित्र वातावरण में हैं, ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, सात्विक भोजन खा रहे हैं, आसपास लोगों का व्यवहार भी हमारे साथ अच्छा है, तो परेशान होने का या गुस्सा होने का बहुत ज्यादा रीजन ही नहीं मिला होगा। स्टिमुलस ही नहीं आया, तो स्टिमुलस नहीं आएगा तो रिएक्शन भी नहीं आएगा हमारा। लेकिन अब ये अच्छा फीलिंग 3 दिन का फीलिंग होना चाहिए? नो। सो बिफोर लीविंग, मंडे से पहले ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये एक अच्छा फीलिंग नहीं, ये एक नई लाइफ की शुरुआत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वापस हम जाएं, सब पूछे हमसे कैसा था, बहुत अच्छा था, कैसा था, बहुत अच्छा था, ट्यूसडे वेडनेसडे हम पीसफुल भी रहे, लेकिन फिर कुछ बातें आई, लोग हमारे ना कहना नहीं माना, घर में बच्चों ने कुछ कह दिया, बातें तो आनी शुरू हो जाएंगी, वो तो वेट ही कर रही है आपकी। वैसे 3 दिन से इकट्ठी होकर पड़ी हुई है ना, आप 3 दिन से थे ही नहीं बातों को फेस करने के लिए, देयर इज अ लॉट व्हिच इज ऑलरेडी वेटिंग देयर। तो उसकी तैयारी यहां से करके जानी पड़ती है, नहीं तो बिकॉज हर प्रोग्राम में इतने सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद उसको क्या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो हर एक का डिफरेंट होता है। कुछ लोगों के लिए वो एक 3 दिन सुंदर अनुभव होता है, 3 दिन शांति, 3 दिन अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोग उससे आगे का जीवन ही पूरा बदल देते हैं। और फिर जो अपना जीवन बदलते हैं वो सिर्फ अपना नहीं बदलते, तो वो ऑटोमेटिकली रिपल इफेक्ट हो जाता है उसका, कि हम अपना जब चेंज करेंगे तो चेंज चेंज चेंज। हमारे दूसरे हॉल में डॉक्टर्स का प्रोग्राम चल रहा है, देखा आपने आगे, तो उसमें मुंबई से एक डॉक्टर आए हैं जो यूरोलॉजिस्ट हैं, कैंसर यूरोलॉजिस्ट, और वो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में काम करते हैं, सीनियर सर्जन है। तो उन्होंने कल स्टेज पर आकर अपना अनुभव सुनाया, तो उन्होंने कहा मैं बहुत गुस्सा करता था, गुस्सा करता हूँ, इतने हाई रिस्क काम में कर रहे हैं सारा दिन, तो मैं बहुत गुस्सा करता था। फिर 1 साल से मैंने ज्ञान सुनना शुरू किया और फिर सेंटर पे भी गए, जैसे अभी आपको सुनाया ना भाई साहब ने, कि अगर इस चेंज को कांस्टेंट रखना है तो रोज चार्जिंग तो करनी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने सुनाया कि मैं सेंटर पे जाना शुरू किया मुंबई में, फिर मेडिटेशन करना शुरू किया। तो ज्ञान को जब अपनी लाइफ में यूज करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अब मेरे जीवन से, मेरे हॉस्पिटल से गुस्से का ट्रेस भी फिनिश हो गया। तो उन्होंने कहा कि पिछले 6-8 महीने में मैंने देखा कि मेरे यहाँ जो सर्जरी और चीजों के टाइम जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती थी वो नहीं हो रही। तो कहते मुझे बहुत टाइम लगा ये कनेक्ट करने में कि इसका मेरे चेंज से कोई कनेक्शन है। तो कहते मैंने एक्चुअली स्टडी किया कि पेशेंट्स तो वैसे ही आ रहे हैं, बीमारियां भी वही हैं, चीजें भी वही हैं, क्यों सब कुछ स्मूथ कैसे हो रहा है, कुछ ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब अंदर का ऊपर नीचे बंद हो जाता है तो बाहर का ऊपर नीचे होना बंद हो जाता है। तो जब हम अपने अंदर चेंज लेकर आते हैं उसका बेनिफिट सिर्फ हमें नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने कहा कि थोड़े महीने के बाद तो मेरी सिस्टर जो नर्सेज है मतलब, उन्होंने आकर कहा डॉक्टर साहब आप ठीक हो ना, एक बार तो गुस्सा कर दो, ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज ही बहुत ज्यादा हो गया है। दैट इज द पावर ऑफ ज्ञान, कि हाउ मच चेंज वी कैन ब्रिंग इन आवर सेल्फ, हाउ मच चेंज, इतना चेंज कि वो बीमारी जड़ से भी खत्म हो सकती है। तो हम अपने अंदर क्या चेंज लेकर आने वाले हैं जो कल से स्थायी रहेगा, परमानेंट? ये नहीं होना चाहिए कि स्टेशन पहुंचते पहुंचते, एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते इतना ही पता चल जाए कि फॉग की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई तो हम ही ऊपर नीचे हो गए, तो कोई क्या फायदा। इट कैन नॉट बी अ 3 डे चेंज। क्या एक चेंज लेकर आए अपने अंदर कल से? हर एक अपना अपना चूज करे, लेकिन फिर भी वो तो ठीक है। चेंज चेंज कोई कोई गलत नहीं है, संस्कारों से करना है। और चेंज वन चेंज पेशेंस रखने, ब्यूटीफुल। और एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सेप्टेंस लाना, ब्यूटीफुल। और स्टेबल माइंड रहेगा। अब अगर एक ये चेंज लाता है तो उसका असर घर पर, उसका असर वर्क प्लेस पर। क्योंकि क्या आपको लग रहा है कि आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बैटरी भी थोड़ी डिस्चार्ज हुई हुई है? हुई हुई है कि नहीं हुई? हुई हुई है। जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कितनी बार ये देखने को मिलता है कि लोग बहुत अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं, जैसे कि फ्रीडम मिली हुई है कि कैसे भी बात करो, कोई कुछ बोलेगा नहीं आपको सामने से, तो आप कैसे भी बात कर सकते हैं। तो छोटी सी भी बात पर जोर से बोलना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, अग्रेसिव तक हो जाना, शिकायत करने की धमकी देना, ये सब चीजें ऑपोजिट द डेस्क हो रही है। और इस सब को सारा दिन इस साइड खड़े हुए वाले लोगों को फेस करना है। तो जब नेगेटिविटी वहां बढ़ती जाएगी तो उसका असर ये साइड पर तो बढ़ेगा, अनलेस हम अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करें, कुछ करें। अगर हम नहीं प्रोटेक्ट कर रहे, क्योंकि हम कस्टमर इंडस्ट्री में अगर कोई है तो उसको सिखाया जाएगा कि सामने से कोई कैसे भी बात करे आपको ठीक से बात करनी है, आपको चुप रहना है, आपको स्माइल करना है, आपको पोलाइटली बात करनी है। तो वो उनकी ट्रेनिंग हो गई बाहर, तो वो कर लेते हैं। लेकिन जब वो बाहर करते हैं वो अंदर उसको कितना ज्यादा सप्रेस करते हैं, तो वो जॉब के लिए बाहर रिएक्ट नहीं किया लेकिन अंदर उसको सप्रेस कर लिया, तो असर तो होगा ही। तो अब उनको एक विधि सिखानी होगी जिससे बाहर भी असर नहीं होना लेकिन अंदर भी असर नहीं होना। नहीं तो मेरा मन परेशान, अशांत, दुखी, और मैंने इतनी नेगेटिव एनर्जी तो कंज्यूम कर ली ना सामने वाली साइड से, उसका असर हेल्थ पर, उसका असर माइंड पर, उसका असर घर जाके फैमिली पर, बच्चों पर। रिएक्शन कहीं ना कहीं तो निकलता ही है। अभी अगर आप यहां खड़े होकर मुझे डांटते जाओ डांटते जाओ डांटते जाओ, लेकिन मैंने चुप रहना है, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने कैसा सोच रहा है? और जब वो मैंने सोचा कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, सबके सामने ऐसा किया, इतने पैसेंजर्स के सामने मुझे डांटा, मेरे स्टाफ के सामने मुझे डांटा, मेरी इंसल्ट की, मेरी डिस, ये थॉट्स तो चल रही है ना ऊपर से, ऊपर से तो अंदर ये थॉट्स चल रही है, और ये सब थॉट्स क्रिएट करके पूरा दिन बिता के शाम को घर गए तो एनर्जी इम्प्योर हो गई, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर वो सिर्फ वाइब्रेशन में न रह के मेरे घर पे जाके मेरे शब्दों और व्यवहार में आई जाना है। फिर वो घर पे वो बच्चे ने इधर से इधर सामान नहीं अगर ठीक से रखा ना, तो जितनी वहां उसने सुनाया था ना, इट इज गोइंग टू कम आउट देयर। बट वी डू नॉट कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स, हमें कनेक्शन जोड़ना पड़ता है इन चीजों का कि हम क्यों इरिटेबल हो रहे हैं, क्यों हम अपने परिवार में जाके डांट रहे हैं, क्यों हमारा मन उदास है। क्योंकि जब हम ये सारे सीन को फेस कर रहे हैं तो हमारे पास अंदर एक मेथड नहीं है जिससे हम अपने आप को बचा सके हैं। तो इसलिए हर वर्ग के लिए अपने अपने चैलेंजेस को क्रॉस करने के लिए ये मेडिटेशन की विधि जरूर यूज करनी है। लास्ट वीक मैं जयपुर एयरपोर्ट पे थी, वहां एक पर्टिकुलर एयरलाइन की असिस्टेंट मैनेजर है, वो टीवी पे प्रोग्राम देख रही है, वो 2-3 सालों से देख रही है, तो उसको अच्छे से यूज करती जाती है। तो उसने मुझे अपना अनुभव सुनाया, कहती आज सुबह क्या हुआ, कोई आया और उसने इतना सुनाया जो नॉर्मल सुनाने की रेंज से भी बाहर वाली रेंज थी थोड़ी सी। तो कहते हैं वो मैंने एक प्रोग्राम में आपके देखा था कि एक व्हाइट सर्कल अपने अराउंड कर लो, परमात्मा को याद करो, अपना सर्कल बना लो, और अगर आपने सर्कल बना लिया तो आपके अंदर दूसरे की एनर्जी एंटर नहीं कर सकेगी। कहते मैंने कर लिया उस टाइम। तो क्या किया, सिर्फ हम व्हाट डज इट टेक, वन थॉट ओनली। तो कहते मैंने किया कि परमात्मा की वाइब्रेशन मेरे पास है, मेरे अराउंड एक व्हाइट कवच है, और ये जो कह रहे हैं ये इमोशनली बीमार है। इमोशनली बीमार व्यक्ति तो ऐसे बात करता है ना, उस तरह से, और इनकी वाइब्रेशन मेरे सर्कल में एंटर नहीं हो सकती। सोच बदल गई। पहले सोच क्या क्रिएट करते, ये मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, ये मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, सबके सामने मुझे अब्यूज कर रहे हैं, मेरी दोनों सोच है सिर्फ, सामने वाले का व्यवहार सेम है लेकिन मेरी सोच दोनों केस में डिफरेंट है। इस केस में मैं असर हो जाएगा, दूसरे केस में मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी बात सुनने के बाद मैंने कौन सी थॉट क्रिएट की। एक चीज पक्का याद रखनी है, हमारे ऊपर जो असर होता है ना वो लोगों के व्यवहार का नहीं होता है। आप वहां से खड़े होकर मुझसे बहुत प्यार से बात करें, बहुत रिस्पेक्ट से बात करें, लेकिन अगर अंदर मैंने कोई गलत थॉट क्रिएट कर ली, पता नहीं क्यों इतने प्यार से बात कर रहे हैं, क्या चाहिए इनको, तो आपका व्यवहार अच्छा है, मेरी सोच गलत है, तो मेरी सोच मुझे खुश नहीं होने देगी, मेरी सोच मुझे हेल्दी नहीं रहने देगी। आपका व्यवहार परफेक्ट है लेकिन मेरी हैप्पीनेस और मेरी हेल्थ किस पर डिपेंडेंट है, कि आपके व्यवहार को देखकर मैंने कैसे थॉट क्रिएट किया। तो क्या यह पॉसिबल है कि किसी के परफेक्ट व्यवहार में भी हमें गलत थॉट क्रिएट करें, पॉसिबल है? किस किस को लगता है ये पॉसिबल है? पॉसिबल क्यों? क्योंकि मैं जो ये थॉट यहां क्रिएट कर रही हूं उसका क्रिएटर कौन? मैं। उनका व्यवहार कहां? वहां। तो वहां वो व्यवहार कर रहे, मैं यहां क्रिएट कर रही हूं। इट्स एज सिंपल एज ये फ्लावर कहां? यहां। इसके बारे में क्या सोचना है मुझे? वो कहां? वो यहां। मेरी जो जहां सोच है वो फ्लावर मेरी सोच नहीं क्रिएट कर रही है। तो इसी फ्लावर को देखकर अलग अलग लोग अलग अलग सोच क्रिएट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये फ्लावर हो, ये प्रॉब्लम हो, या ये कोई बहुत बुरी तरह से व्यवहार करने वाला पैसेंजर हो, वो बाहर ही है, बाहर है। इसको देखकर हम अलग अलग लोग अलग अलग सोच क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी खुशी और सेहत उस पर डिपेंडेंट है? ओनली हम क्या थॉट क्रिएट करते हैं। ये हमें किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया गया, और बचपन से हमें सिर्फ यही सिखाया गया, लोग अगर अच्छे तो हम खुश, लोग अगर हमारे साथ अच्छे नहीं तो उदास होना तो स्वाभाविक है। शब्द भी क्या है, स्वाभाविक है, मतलब ये नेचुरल है, नेचर है। लोग कहना मानेंगे तो सब ठीक, नहीं कहना मानेंगे तो गुस्सा होना, तो ये हमें सिखाया गया। और कैसे सिखाया गया, हमारे बड़ों ने उस तरह से जीवन जी के वो बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर डाला। मार्क्स अच्छे आए तो सब खुश, मार्क्स अच्छे आए नहीं आए तो दुखी। तो हर टाइम हम कोरिलेशन क्या देख रहे थे, दिस इज द कोरिलेशन जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि यहां की स्थिति यहां पे डिपेंडेंट है। ये हमारे अंदर डीप 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 फिट हो गया। फूल मुझे अगर पसंद आए तो मैं खुश, नहीं पसंद आए तो मैं नाराज। तो मतलब यहां कोई चॉइस नहीं है, यहां कैसे रहना है वो कहां पे डिपेंडेंट है। तो हम क्या करते गए, हम दुनिया को ठीक करते गए ताकि हम खुश रहें। तो मैंने वो भैया को जाके बोला, आप वो वाले फूल रखो जो मुझे अच्छे लगते हैं ताकि मुझे अच्छा लगे। दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू, कि मेरे अनुसार ये होना चाहिए, मेरे अनुसार ये होना चाहिए, मेरे अनुसार ये होना चाहिए। सारे लोग जो मेरे साथ काम करते हैं वो मेरे अनुसार होने चाहिए, मेरे बच्चे मेरे अनुसार होने चाहिए, पूरी दुनिया, मौसम भी मेरे अनुसार होना चाहिए। क्योंकि अगर मौसम भी अच्छा नहीं हो तो भी हम परेशान हो जाते हैं। नथिंग वॉज बींग क्रिएटेड हियर, सब चीज बाहर की वजह से ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। स्पिरिचुअलिटी यही शिफ्ट लाती है कि सिचुएशन कहां है, बाहर। प्रॉब्लम कहां है, बाहर। व्यक्ति कहां है, बाहर। उसका इधर से कोई कनेक्शन नहीं है। यहां जो हम क्रिएट करेंगे ये चॉइस किसकी है। तो अगर मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो भी मैं गलत सोच सकती हूं। तो अगर कोई मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो भी मैं अच्छा सोच सकती हूं। यस यस पक्का। अब वो थोड़ा गलत करे, गलत करे, बहुत गलत करे या बहुत बहुत गलत करे, उससे मेरा क्या नुकसान होने वाला है, नुकसान किसका होने वाला है उसका। तो उल्टा उस पर रहम करो, उस पर रहम करो कि वो अंदर से कितना खाली है जो इतना जोर जोर से बोल रहा है। जितना जो अंदर बीमार होगा उतना उसकी सोच बोल और व्यवहार ऐसा ऊपर नीचे वाला होगा। मतलब मेरा अपने ऊपर संयम नहीं है। थोड़े दिन पहले मैं एयरपोर्ट पे खड़ी थी, मेरे आगे जो खड़े थे वो करते गए गुस्सा, करते गए करते गए करते गए। वो भैया जो उस साइड खड़ा था वो कहता है सर, बट सर, नहीं नहीं सर का क्या मतलब है, बुलाओ तुम अपने बड़ों को। मैं अभी अब उसके साथ उसकी वाइफ खड़ी थी, कर्मा है ये, इफ शी वांटेड वो उस चीज को न्यूट्रलाइज कर देती थी इससे। वो उसको बोलती है नहीं नहीं अभी शिकायत करो, बुलाओ तो एक की जगह दोनों ज्वाइन कर लिया। वो कहते ऐसे कैसे, एंड आई एम जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड देम एंड साफ दिख रहा है कि कुछ गलत नहीं हुआ है। और अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ भी है तो ये ऐसा रिएक्शन की तो कोई बात है ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं रख रहे हैं, हमें छोटी छोटी बातों पे भी, तो हम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब दुनिया लो वोल्टेज पे चल रही है, कब किसका कुछ पता नहीं है। क्योंकि कब कौन क्या बैगेज लेकर आया है, कौन सी चीज उसको चुभ जाती है, कब वो रिएक्ट कर देता है। हम कहेंगे 5 मिनट पहले तो ठीक थे, अब इनको क्या हो गया। इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। तो ऐसे सब में अपने मन की स्थिति को लो वोल्टेज लोगों पे डिपेंडेंट अगर कर दिया तो फिर खुश रहना, तो खुश रहना तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और सारा दिन लोगों के सामने ऐसे खड़े रहेंगे, प्लीज अच्छा बिहेव करो ताकि मैं खुश रहूं, प्लीज रिस्पेक्ट मी, प्लीज मुझसे प्यार करो। सो डेली डेली स्पिरिचुअल चार्जिंग क्या करेगी, इधर का और इधर का कनेक्शन को कट कर देगी। मतलब मतलब मेरे मन की स्थिति किस पे डिपेंडेंट है? मेरी मन की स्थिति किस पे डिपेंडेंट है? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर. दिस इज पावर, दिस इज पावर. ना मौसम मेरे अनुसार हो, ना सिचुएशन मेरे अनुसार हो, ना लोग मेरे अनुसार हो, लेकिन गारंटी है कि मैं मेरे अनुसार होंगे. हो सकता ना ये? ये हो सकता. जब हम इस पावर के साथ चलेंगे, इस पावर के साथ चलेंगे, तो हमें दुनिया में कोई भी बात से डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक चीज गारंटी है. एक ऐसे युग में जहां किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, आज मौसम की भी गारंटी नहीं. अभी सुबह ठंड होती है, दोपहर को, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल. पहले कैसी दुनिया थी? काफी सर्टेनिटी थी. अभी कैसे हो गया? ऊपर नीचे हो गया है. तो जब इतना कुछ अनसर्टन है, एक चीज सर्टन होनी चाहिए. तो आज से अपनी गारंटी लेना शुरू करो कि मेरी गारंटी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, है गारंटी अपनी ना? गारंटी अपनी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अनब्रेकेबल है. यहां दिस इज अ डेली प्रैक्टिस, अ डेली प्रैक्टिस, अ डेली प्रैक्टिस. इट विल नॉट हैपन फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट, लाइक इट विल हैपन 10%, 20%, 30%, 40%. लेकिन चेंज कितने दिन में शुरू होगा? चेंज किस दिन से शुरू होगा? फर्स्ट डे. दुनिया में लोगों को लगता है आदत बदलना बहुत मुश्किल काम है. आदत कैसे बदल सकते हैं? मेडिकल साइंस भी कहती है इट्स इन द जीन्स, कुछ बदल ही नहीं सकता जैसे. और स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि आदत बदलने जैसी इजी चीज और कोई है ही नहीं, है ही नहीं. इजीएस्ट थिंग टू डू एंड एब्सोल्यूटली फॉर फ्री, मुफ्त में भी होती है. और इसके लिए मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना होता. मैं चूज करूं मेरी आदत, उस पे काम करूं, ठीक करना शुरू कर दूं. तो एक पर्सनल गारंटी अपनी रोज लेनी शुरू करनी है कि मेरा मेरे ऊपर फुल संयम है. कोई बात, कोई परिस्थिति, किसी का व्यवहार मुझे हिला नहीं सकता. तो फिर गुस्सा आने का क्वेश्चन तो, गुस्सा आने का क्वेश्चन तो, बहन मैं अभी आपको सबके सामने अगर डांट दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, स्माइल करेंगे, बाहर से नहीं. बाहर से नहीं स्माइल करना है, बाहर से नहीं स्माइल करना है. अगर कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो एक चीज याद रखनी है, वो अंदर से कितना. एक दिन मैं नर्सिस का प्रोग्राम कर रहे थे, तो उनको पूछा आपके जीवन में टेंशन का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर्स गुस्सा करते हैं. तो मैंने कहा आपके तो पेशेंट्स भी अलग अलग, पेशेंट्स भी तो अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं ना, बीमार होते हैं तो अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं. कोई खाना नहीं खाता, कोई बड़ी अजीब अजीब डिमांड रखते हैं. तो वो सिस्टर्स को तो आदत है उनके साथ काम करने की, तो वो कहते नहीं वो तो बीमार है ना. मैं कहा वो भी बीमार है. इट वॉज एन वे ऑफ लुकिंग एट पीपल, क्योंकि प्रैक्टिस तो है ही बीमारों के साथ काम करने की. रोज काम कर रहे हैं इतने सारे और प्यार से करते हैं. पेशेंट डांटता है, चिल्लाता है, नर्स कितने प्यार से बात करती, कोई बात नहीं, खाना तो खाना है, करते हैं ना प्यार से हम. क्यों? क्योंकि हमको पता है कि सामने वाला बीमार है. जैसे हमें फिजिकल बीमारी दिखाई देती है, हमें इमोशनल बीमारी भी देखनी पड़ेगी. लेकिन जब हमसे कोई गलत व्यवहार करता है, हम ये नहीं समझते कि ये बीमार है. हम कहते हैं मेरे साथ गलत बात की, मेरे साथ. उसने मेरे साथ गलत बात नहीं की, वो बीमार है इसलिए ऐसे बात की. जिसके मन की स्थिति ठीक होती है वो गलत बात कर ही नहीं सकता है, वो गलत व्यवहार कर ही नहीं सकता है. हम खुद को देख सकते हैं. जिस दिन हमारा मूड अच्छा है, हमारा व्यवहार डिफरेंट होता है. जिस दिन हमारा मूड अपसेट है हमारा व्यवहार डिफरेंट होता है. तो इट डिपेंड्स ऑन माई स्टेट ऑफ माइंड, मेरे मन की स्थिति. जिस दिन मेरा मूड अच्छा होगा मैं दूसरों को भी कहूंगी अच्छा गलती होगी ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो, भूल जाओ. मेरा मूड खराब होगा, छोटा इधर से उधर हिल जाए तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी. डिपेंड्स ऑन माई स्टेट ऑफ माइंड. तो वेन वी सी कि दूसरों के व्यवहार अलग अलग तरह से हैं हमारे आसपास, हमें याद रखना होगा ये इमोशनली बीमार है. इमोशनल बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? हाँ जी, डिप्रेशन इमोशनल बीमारी नहीं है. डिप्रेशन तो मेंटल हेल्थ इश्यू है. इमोशनल बीमारियां कौन सी होती हैं? गुस्सा आना एक इमोशनल बीमारी है, और इरिटेट होना भी एक इमोशनल बीमारी है, और गिल्टी फील करना भी इमोशनल बीमारी है. और कौन सी इमोशनल बीमारी है? ईगो तो सारी बीमारियों की जड़ है. और कौन सी इमोशनल बीमारी है? डर. बहुत आज की बहुत बड़ी बीमारी है डर. डर भी बीमार, अकेलापन भी एक बीमारी है. और वेरी गुड, वो भी बीमारी है. ईर्ष्या करना भी बीमारी है. इनसिक्योरिटी भी बीमारी है. अब ये बीमारियां हैं, क्या हम में से इसमें से कोई बीमारी है? है हमें कोई बीमारी इनमें से? क्या हम में इनमें से कोई बीमारी है? गुड. अच्छा है ना, सारी बीमारियां कौन सी स्टेज पे? थोड़ी थोड़ी है. तो इसका मतलब ठीक करना बहुत इजी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बीमारियां थोड़ी बढ़ गई है. अहंकार इतना हो जाता है कि मेरी पूरी दुनिया मेरे अनुसार चलनी चाहिए, और नहीं चली तो फिर दूसरी बीमारी आती है, गुस्सा करना. और गुस्सा करके कहना मनाना, तो तीसरी बीमारी आती है डर कि लोग मेरा कहना नहीं मानेंगे. तो बीमारियां भी सारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए एक एक बीमारी पे तो काम करना ही नहीं पड़ता. अब अगर कोई बीमार हो तो उसका इलाज कैसे किया जाता है? अगर कोई बीमार हो तो उसका इलाज कैसे किया जाता है? एक तो है अगर कोई और बीमार है, कोई और बीमार है तो उसके लिए तो रहम करो, कंपैशन है ना, कंपैशन है. ये थोड़ी हम कहेंगे कि मेरे साथ क्यों गलत बात की, हम कहेंगे ये बीमार है. वी ऑलवेज हैव टू रिमेम्बर, सामने वाला मेरे साथ जो व्यवहार कर रहा है वो मैं जो हूं उसकी वजह से नहीं है, वो जो है उसकी वजह से है. अगर किसी के अंदर शक करने की आदत है तो आप बेस्ट काम कर लो, वो फिर भी डाउट करेंगे. तो हम कहेंगे मैंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, इसने फिर भी डाउट किया. वो उसका डाउट करना मेरे काम पर डिपेंडेंट नहीं है. उसका डाउट करना किस पर डिपेंडेंट है? उसके संस्कार है डाउट करने का. किसी का संस्कार है गलती ढूंढने का, निंदा करने का, क्रिटिसाइज करने का. अब ये परफेक्ट स्टेज है, परफेक्ट टेबल है, परफेक्ट सब कुछ है, लेकिन अगर मेरे अंदर क्रिटिसाइज करने का संस्कार है तो मुझे तो चार गलतियां भी मिल सकती हैं दो मिनट के अंदर. मिल सकती है? नहीं मिल सकती. फिर मैंने क्या करना है? जो भैया इसने जिसने पूरा ये स्टेज तैयार किया उसको बुलाना है, और मैंने कहा आप कुछ काम ही नहीं करते, आपको तो कुछ करना ही नहीं आता, बेकार में ऐसे बैठे हुए हो, देखो इधर गंदा है, इधर गंदा है. वो कहेगा मैंने सारा दिन साफ किया, अच्छा किया, और ये रिजल्ट मिला इसका. इट्स नथिंग टू डू विद उन्होंने कितनी मेहनत की, इट इज टू डू विद विच डजेंट मीन कि हमें करेक्शन नहीं करना है. लेकिन अगर मैं इमोशनली हेल्दी होती तो मैं उसको उसी करेक्शन को किस तरह बताते, और अगर मैं इमोशनली बीमार हूं तो उसी करेक्शन को किस तरह बताऊंगी. फर्क हो जाएगा, फर्क हो जाएगा. अगर हम इमोशनली हेल्दी हैं हम आके बताएंगे मतलब भैया ये और ये खराब है, आप इसको बाद में देख लेना, सिंपल. लेकिन अगर मैं इमोशनली बीमार हूं तो मैंने बहुत बड़ा इश्यू कर देना, यहां तक कह देना आप अपने बड़ों को बुलाओ, बताओ मेरे को जरा शिकायत करनी आपकी. तो जस्ट डिपेंड्स नॉट ऑन यहां कितनी सफाई है, डिपेंड्स ऑन यहां कितना गंदा है. इसीलिए लोगों के व्यवहार को अपने ऊपर पर्सनली नहीं लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने इतने अच्छे से काम किया फिर भी इन्होंने आकर ऐसा किया, इधर तो काम करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि यहां कितना भी सिंसियरली काम करो लोग आकर कुछ ना कुछ बीमार है. उनकी बीमारी को पर्सनली नहीं लेना, अपना बेस्ट करना और उसको इम्प्रोवाइज करना. अगर कोई ना अप्रिशिएट करे, तो ऐसे नहीं खड़े रहना अपने आप को, बहुत अच्छा किया कल और अच्छा करेंगे, लेकिन उसने मुझे ऐसा बोला ऐसा किया, फिर अपने दोस्त के पास गए पता है उसने क्या बोला, कहेंगे क्या करेंगे, कल उसने मुझे भी ऐसा बोला था, फिर तीसरे के पास जाएंगे कहेंगे वो है ही ऐसा, वो रोज बोलता है. वर्क कल्चर, वर्क एनवायरमेंट, वाइब्रेशन और मेरे मन की स्थिति और मेरी एनर्जी फील्ड सारी डिस्टर्ब हो जाती है एक के बीमार होने की वजह से. और वो वाला जो बीमार है, क्योंकि हम उसके बारे में ऐसा ऐसा सोचते हैं और बोलते हैं, उसकी वो बीमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. हमें लोगों की बीमारी को अब्सॉर्ब नहीं करना है और अपने मन की स्थिति से उनकी बीमारी को क्या करना है, ठीक करना है. अब अगर कोई आए और इस तरह से मुझे डांटे, क्रिटिसाइज करे, गलतियां निकाले, अगर मैंने यहां कुछ नहीं क्रिएट किया, स्टेबल, अंडरस्टैंड से, हां जी मैं कर देती हूं, तो मेरी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगी वो उनकी बीमारी को क्या करेगी, ठीक करेगी. हमारे पास पावर है, लेकिन वो तब होगा जब मैं उनके व्यवहार को देखकर ये नहीं कहूंगी इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया. तो लोगों का मेरे साथ कनेक्शन नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो अपना कर रहे हैं, मुझे जो करना है. गलत से गलत व्यवहार में भी हम सही सोच सकते हैं, राइट. अब जहां हम काम करते हैं वहां जो सब लोग इकट्ठे आ रहे हैं, जैसे भाई साहब ने कहा, छोटी 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 बीमारियां सबके अंदर है, कुछ के अंदर ज्यादा है, कुछ के घर में बहुत बड़ी परिस्थितियां चल रही हैं, हमें पता भी नहीं होंगी. हमें थोड़ी पता होगा कि किसके घर में क्या चल रहा है. वो सारे इकट्ठे आते हैं, सुबह यहां आते हैं, शाम को यहां से लेट घर जाते हैं. आपको नहीं लगता कि वर्क प्लेस की अब जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वर्क प्लेस अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा करे, वर्क का वातावरण हम कुछ ऐसा क्रिएट करें कि लोग सुबह जिस मन की स्थिति से आए थे शाम को वो खुश वापस जाने चाहिए. होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, विच मीन्स नथिंग, विच जस्ट मीन्स वर्क कल्चर चेंज करना है. लोग एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, किसी से गलती हुई तो लोगों को कैसे उसको समझाना है, ये वर्क कल्चर चेंज करना है. ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बीमार आया था और यहां आने के बाद उसको इतनी जोर से डांट पड़ी तो वो और बीमार हो गया. लोगों को शाम को खुश वापस भेजो. अगर लोगों को शाम को खुश वापस भेजा तो वो कल सुबह और खुश वापस आएंगे. फिर अगर वो सुबह और खुश वापस आएंगे तो वो काम और अच्छा करेंगे, और अच्छा करेंगे शाम को और खुश जाएंगे, अगले दिन सुबह और खुश आएंगे, कलयुग सत्ययुग बन जाएगा. लेकिन लोग दुखी आएंगे, डांट खाएंगे और दुखी जाएंगे, घर जाके लड़ेंगे, फिर बच्चों को डांटेंगे, फिर रात को गिल्टी फील करेंगे, सुबह आएंगे और दर्द में आएंगे, दर्द में आएंगे गलती करेंगे, गलती करेंगे और डांट खाएंगे. बिकम्स अ विशियस साइकिल. इट्स अ विशियस साइकिल, इधर दिस वे और दिस वे. सो अब लोग घर पर बहुत कम समय बिता रहे हैं. That's the change ना. पहले क्या था, 5-6 बजे घर, 4 घंटे बहुत होते हैं घर पे, और घर का वातावरण भी पहले ज्यादा हैप्पी हेल्दी था. तो 4 घंटे में आपके ऑफिस का तनाव जो है वो सारा क्लीन हो जाता है। अब घर पहुंचते पहुंचते अब घर पहुंचते पहुंचते अब पहले कुछ साल पहले तक जाएं तो घर से एक व्यक्ति काम पे जा रहा था, एक जना घर पे था। तो एक थोड़ा आता भी था डिस्चार्ज, तो दूसरा समझ सकता था, एक्सेप्ट करो, अंडरस्टैंड करो, ऐसे डिफरेंट कि हाँ इनको ऑफिस में बहुत कुछ होता है, सुनना पड़ता है। अब तो दोनों उस स्थिति में आ रहे हैं, अब क्या करेंगे? तो अब दो डिस्चार्ज बैटरी घर आती है, चेंजेस है ना, चेंजेस है। तो अब जब दो घर आएंगे, लेट आएंगे, दोनों एक बहुत डिफिकल्ट दिन देखकर घर आएंगे, घर आके एक दूसरे को बोलते हैं, आपको पता मेरा दिन बहुत खराब था। दूसरा वाला बोलता है, मेरे से तो पूछना नहीं मेरा कैसा है, बस मतलब मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करना ज्यादा, बहुत ज्यादा, मेरा मूड तो आज ऑलरेडी। तो एक दूसरे को देने के लिए रिश्ते में क्या बच रहा है? इसका डायरेक्ट असर रिश्ते के ऊपर। अब जब एक दोनों एक दूसरे को रिश्ते में बहुत ज्यादा कुछ नहीं दे पा रहे, घर का वातावरण फर्क पड़ गया, बच्चों के ऊपर डायरेक्ट असर। ये सब कुछ चेंज हो सकता है। वी कैन फिनिश डिप्रेशन, वी कैन फिनिश डिवोर्स, वी कैन फिनिश डिजीज, अगर हम वर्क प्लेस को हैप्पी बना लें। ये दो लोग अगर शाम को खुश वापस आए हैं तो इनका रिश्ता ठीक हो जाएगा, और अगर इनका रिश्ता ठीक हो गया, इनके बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो अब जिम्मेवारी घर पर नहीं, अब वर्क प्लेस पर पड़ गई है, क्योंकि ज्यादा समय वहां और रास्ते में बिताया जाता है ट्रैवल में। क्या हम अपने अपने वर्क प्लेस को, अपने ऑफिस को, अपने पोर्ट को, अपने एयरपोर्ट को एक नो एंगर जोन बना सकते हैं? जैसे एयरपोर्ट पे एक वो स्मोकिंग वाला कमरा नहीं बना होता आजकल अलग से, जाओ और अपने आप को भी नुकसान दो और बाकियों को भी नुकसान करो वहां पे, बाकी एयरपोर्ट साफ है ना। क्यों, वाई टू डू एनीथिंग इन पब्लिक विच इज गोइंग टू हार्म एवरीबडी एल्स? पहले तो नहीं होता था, फिर एक नियम बना, नियम से सबका कितना फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ कि हमें हानि नहीं हो रही है। तो अगर स्मोकिंग से इतना नुकसान होता है, गुस्से से भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि गुस्सा हम कभी कभी करते हैं लेकिन हमारे आसपास के लोग फियर में रहते हैं। तो गुस्से का भी नुकसान होता है लेकिन डर का भी नुकसान होता है। अब एक एयरपोर्ट को विजुअलाइज करते हैं कि एयरपोर्ट पे हर जगह लिख दो, दिस इज अ नो एंगर जोन। तो पहले वहां के जो काम करने वाले लोग हैं उनको एंगर पहले बंद करना पड़ेगा, और फिर जो पैसेंजर है उनको भी गुस्सा करना अलाउड नहीं है। बात करो, कुछ आपके साथ सही नहीं हो रहा उसकी बात करो, लेकिन बात करने का एक तरीका होता है। सभ्यता खोकर कौन सा सोल्यूशन निकला आज तक? लेकिन वो फिर हमें वहां का कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम सामने वाला चिल्लाता जाएगा और हम उसको लेते जाएंगे उसकी बात को, तो वहां का जो गुस्सा है वो घटने वाला नहीं है। सो सर्विस इंडस्ट्री विल ऑल्सो हैव टू ले डाउन सम नॉर्म्स। अगर मैं किसी को फ्रीडम दूं कि हाँ हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आप यहां आकर कैसे भी हमसे बात कर सकते हैं, तो वो तो लो वोल्टेज पे चल ही रहे हैं। अपने ऑफिस में कुछ नहीं बोल पाए, अपने घर पे बीवी बच्चों को कुछ नहीं बोल पाए, तो चलो एयरपोर्ट पे आके जो सामने खड़ा है उसी को डांट दो। इट इज जस्ट वेंटिंग आउट अ लॉट ऑफ अक्यूमुलेटेड इमोशनल टर्बुलेंस। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए, हम वहां भी नहीं बोल पाए, हम यहां भी नहीं बोल पाए, हमें यहां भी बोलना अलाउड नहीं है, इस तरह से बात नहीं की जा सकती है। वो ही बात आप बैठकर आराम से बात करो, लेकिन आप ये भाषा, ये बात करने का तरीका, ये यूज नहीं हो सकता। क्यों? कर्ता एक है, स्मोकिंग एक करेगा, हवा तो सारी दूषित होगी ना। तो ऐसे ही एक करेगा, लेकिन नेगेटिव वाइब्रेशन तो चारों तरफ फैल रही है, वो हर एक पे असर करेगी। वो सिर्फ जो डांट सुन रहा है उस पे असर नहीं करती है, वो उस पे असर नहीं करती है, वो डांट चारों तरफ फैलती है। आज हमारी बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हम दूषित एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, भले हम डांटते नहीं हैं, लेकिन और लोग डांटते हैं, तो वाइब्रेशन तो हम वही वाले ले रहे हैं। जैसे आज हम दिल्ली शहर को देखते हैं, पोल्यूशन बढ़ गया, किया कुछ लोगों ने, हवा खराब हुई, लेकिन वो दूषित हवा लेनी तो सभी को है, सभी को है। तो करता कोई और है, हवा दूषित होती है, बीमार कोई और हो जाता है। इसी तरह गुस्सा किसी ने किया, चिल्लाया किसी ने, हवा दूषित हुई, असर किसी और पर हुआ, डिप्रेशन किसी और को हो गया। कनेक्शन है। अगर हमें बीमारियों को खत्म करना है, डिप्रेशन को खत्म करना है, हमें हवा को साफ करना पड़ेगा, हमें हवा को साफ करना पड़ेगा, विच मीन्स वाइब्रेशन को चेंज करना पड़ेगा, एंड विच मीन्स ये एंगर और फियर के इमोशन को खत्म करना पड़ेगा। आप एंगर एंड फियर दो बीमारियों को भी अगर हवा से साफ कर दो, लोगों की बैटरी चार्ज होने लग जाएगी, होने लग जाएगी। लेकिन गुस्सा गुस्सा अलाउ कर करके जो गुस्सा करता है उसका अपना नुकसान कितना होता है। तो क्या हम ये एक बीमारी को यहां से छोड़ के जा सकते हैं? जा सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने ऑफिस के बाहर जाकर, अपने ऑफिस के बाहर जाकर प्लेट पे लिख देना है, ऐसे कुछ कुछ नवीनता लानी है जो हम करेंगे, नहीं तो ऑपोजिट हो रहा है। एक गुस्सा करता है, उसको देख के लोग देखते हैं, अरे इसने गुस्सा किया, इसका काम हो गया, तो मैं भी करूंगा। ऑपोजिट, ऑपोजिट है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो कर्म आप करेंगे, आपको देख सब करेंगे। तो ध्यान से करना है। तो हम जहां जहां हैं, अगर हम एक वो चेंज लाते हैं, वो एक चेंज नीचे 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 रिपल ऑफ होता है। लेकिन मैं हर परिस्थिति में शांत रहूं और गुस्सा नहीं करूं, उसके लिए मुझे सुबह तो अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा। सुबह अखबार तो नहीं पढ़ते? अब बंद कर दिया? यहां मिली नहीं होगी ना तीन दिन वैसे भी, लेकिन आजकल तो फोन पे ही मिल जाता है सब कुछ। इट्स इंफॉर्मेशन का सोच पर डायरेक्ट असर है। ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में हम क्या करते हैं, पहले सुबह अखबार पढ़ते थे, अब सुबह ज्ञान सुनते हैं। तो वो आधा घंटा जो नेगेटिव बातें पढ़ने में जाता था या देखने में जाता था, वो आधा घंटा अब परमात्मा का ज्ञान भरने में जाता है। बस वो आधा घंटा चेंज कर दिया, विच मीन्स इमोशनल डाइट चेंज कर दी। दिस इज ऑल्सो इमोशनल डाइट, कि जो हम सुनेंगे पढ़ेंगे देखेंगे वो ही अंदर फिट होता है, वैसे ही हम सोचेंगे बोलेंगे करेंगे। तो अगर अपनी इमोशनल हेल्थ को चेंज करना है तो अपनी इमोशनल डाइट को चेंज करना पड़ता है। यहां से जाने के बाद वन मंथ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सुबह सुबह तामसिक चीज सुनेंगे देखेंगे पढ़ेंगे नहीं, ठीक है? एंगर अग्रेशन फियर पढ़ेंगे सुनेंगे तो एंगर अग्रेशन फियर ही क्रिएट करेंगे। अगर पीस हैप्पीनेस रिस्पेक्ट क्रिएट करनी है तो सुनना पढ़ना देखना भी क्या पड़ेगा, वैसे ही बातें सुननी पड़ेंगी। इसीलिए हाफ एन आवर ज्ञान की स्टडी के लिए रोज सुबह फिट कर दे शेड्यूल में, फिट कि ये आधा घंटा मेरा अपने लिए है। फिर सेंटर पे भी जाए, अब वही ज्ञान सुबह घर पे सुने पढ़े या सेंटर पर जाकर करें, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? वाइब्रेशन, कलेक्टिव स्टडी, कलेक्टिव स्टडी करेंगे और वो वैसा वातावरण है सी यहां पर आकर पता है अच्छा क्यों लग रहा है? हमें कई बार पता भी नहीं होता हमें क्यों अच्छा लग रहा है। यहां की वाइब्रेशन में पीस है, हैप्पीनेस है, वो सब तो है, लेकिन यहां की वाइब्रेशन में एक बहुत बड़ी चीज है जो दुनिया की वाइब्रेशन से डिफरेंट है। दुनिया में वाइब्रेशन है कमाना कमाना कमाना, यहां वाइब्रेशन है देना देना देना। ये एक वाइब्रेशन हमें सुकून देती है, सुकून देती है कि यहां हमें कोई मांग नहीं रहा, ये करो ये करो, सिर्फ हां ये लो ये लो ये लो ये लो। बेस्ट ऑफ एवरीथिंग नहीं है, सिंपल चीजें, भोजन भी सिंपल है, कमरे भी सिंपल है, लेकिन भावना लेने की नहीं है, भावना देने की है। अब ये भावना जरूरी नहीं है कि सिर्फ आश्रम में हो, देने की भावना जहां होगी ना वहां ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट हो सकता है कि जो आएगा उसको सुकून मिलेगा। देने की भावना मतलब मैं रिस्पेक्ट दू, मैं प्यार दू, मैं खुशी दू, मैं अंडरस्टैंड करू। बाहर क्या है, आप मुझे रिस्पेक्ट दो, आप मुझे प्यार दो, आप मुझे समझो, नहीं। धन की तो अलग बात, लेकिन वाइब्रेशंस भी सबको सिर्फ देना देना देना। इसीलिए कहते हैं ना कि दिया अगर जलता रहेगा तो शुभ है, और दिया अगर बुझ जाए तो अशुभ है। तो उसको कहते ही दिया है, दिया मतलब, दिया मतलब दिया दिया। तो सारा दिन में चेक करो मैंने क्या क्या दिया, या मैं सारा दिन सत्युग में देव्य आत्माएं देवी देवता ऐसे खड़े फोटो में ऐसे है ना ऐसे, तो देवी देवता मतलब जो देता है। आज भी प्रकृति में जो चीजें देती हैं उनकी पूजा होती है, सूर्य की पूजा हो रही है, वो कोई परमात्मा तो नहीं है, भगवान ने पूजा क्यों हो रही है, देता है बिना कोई। जल की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है, जो दूसरों को सुख देता है और उसको उनसे कुछ नहीं चाहिए तो पूजनीय बन जाता है। मनुष्य आत्मा का संस्कार भी है देना देना। स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं ना हम, कहते हैं ना शुभ होता है तो कोई भी काम शुरू करते हैं तो स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं। स्वास्तिक में चार भाग है, चार भाग चार हाथ है, वो चार हाथ की पोजीशन देखें। फर्स्ट भाग में हाथ कैसा है, ऐसा ऊपर है ना, ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, तो फर्स्ट भाग में हाथ ऐसा है। ये क्या है, ऐसा हाथ मतलब आशीर्वाद देना। सेकंड भाग में हाथ कैसा है, नीचे हो गया, ठीक है। थर्ड भाग में हाथ कैसा है, वन इज लाइक दिस, सेकंड इज लाइक दिस, थर्ड इज लाइक दिस। थर्ड भाग में क्या बन गए, फोर्थ भाग में हाथ इज लाइक दिस। सत्युग त्रेतायुग द्वापरयुग कलयुग, कलयुग के बाद सत्युग सत्युग। तो इस दुनिया को बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऐसे से ऐसे में शिफ्ट होना, देना शुरू करना, देना सुख देना, दुआएं देना, लोगों को एक्सेप्ट करना, उनके दर्द को समझना, उनकी सेवा करना, इमोशनली सेवा करना। और जब हम वो करेंगे तो हम देने वाले बन जाएंगे, देने वाले बन जाएंगे तो दुनिया बदल जाएगी। तो वी हैव टू स्टार्ट विद आवर वर्क प्लेस, कि वहां पर हमारा एक दूसरे के साथ काम करने का कैसा तरीका है, फिर हमारा सामने वाले के साथ काम करने का तरीका कैसा है, फिर वैसे ही सामने वाले का भी हमारे के साथ काम करने का तरीका बन जाएगा। तो क्रिएट करें फिर नो एंगर जोन ऑफिस में, घर पे शुरुआत वहीं से। इट्स अ विशियस साइकिल है वो. अगर ऑफिस में सारा दिन अच्छा रहेगा ना, घर पे अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि घर पे समय कम, घर पे मेजॉरिटी समय सोने में बीत रहा है, जागृत समय बहुत कम है घर पे. सो वेकिंग टाइम, एक्टिविटी टाइम वो वर्क प्लेस पे ही है ज्यादा. तो इसलिए ध्यान. अब सुबह की शुरुआत, इमोशनल डाइट, नेगेटिव कुछ भी पढ़ना सुनना नहीं, मीडिया सोशल मीडिया को ध्यान से यूज करना. क्लिक क्लिक क्लिक, पढ़ते गए, देखते गए, सुनते गए, पढ़ते गए, देखते गए, सुनते गए, कॉपी करते गए, फॉरवर्ड करते गए, औरों को भी सुनाते गए, दिखाते गए, तो वातावरण को दूषित करते गए. जो बनना नहीं है वो सुनना पढ़ना देखना नहीं है. इजी. कोई किसी का मजाक उड़ा है, कोई किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई किसी की निंदा कर रहा है, पोस्ट कर देता है, हम पढ़ लेते हैं, हम औरों को भी फॉरवर्ड कर देते हैं, हम वातावरण को दूषित कर रहे हैं. तो कोई चीज ऐसी हमारे पास आए तो ना खुद पढ़े और ना आगे फॉरवर्ड करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. तो सुबह सुबह जो सुने पढ़े देखें वो प्योर होना चाहिए. तो यहां से जाने से पहले हम अपने नजदीक का सेंटर देखेंगे कहां पर है, और जाते अगले दिन से ही कनेक्शन रखना है, क्योंकि यहां 3 दिन आने का फॉर्च्यून क्या है, बैटरी चार्ज हो जाती है. फिर ऐसा नहीं सोचना चलो अभी तो आए हैं नेक्स्ट वीक जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक तक क्या हो जाएगी, डाउन नहीं होगी, लेकिन फुल बेनिफिट अभी किया है तो उसी को वहीं से आगे बढ़ाएंगे ना. इट्स लाइक गाड़ी सर्विसिंग को आई, अभी आते ही हम उसको ठीक रखेंगे आज से. है शिफ्ट मिलती है, एक बहुत बड़ा हमें पावर मिलती है उससे. तो हम सेंटर पे कनेक्शन रखेंगे तो हमारा आधा पौना घंटा सुबह वहां पे होना चाहिए कि ज्ञान सुने, मेडिटेशन. हर सेंटर पे एक मेडिटेशन रूम है, उस मेडिटेशन रूम में मेडिटेशन के अलावा कुछ नहीं होता. तो मेडिटेशन रूम का वाइब्रेशन सेंटर के वाइब्रेशन से भी हायर होता है, क्योंकि सेंटर में तो फिर भी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बात हो रही है, कोई कुछ हो रहा है कुछ. मेडिटेशन रूम में मेडिटेशन के अलावा कुछ नहीं होता. इसी तरह अगर आप अपने घर में भी देखेंगे, हर कमरे की अलग एनर्जी होती है. जिस कमरे में टीवी चल रहा है उसकी एनर्जी अलग होती है, जिस कमरे में पूजा रूम होता है उसकी एनर्जी अलग होती है, क्योंकि उस कमरे में हो क्या रहा है उस पर डिपेंड करता है वो सब चीज. तो इसलिए सेंटर पर एक मेडिटेशन रूम है, वहां जरूर जाना चाहिए. बहुत ज्यादा टाइम नहीं भी हो किसी के पास सेंटर जाने के लिए, वो आते जाते 10 मिनट सिर्फ मेडिटेशन रूम में बैठ जाए, बैटरी चार्ज हो जाएगी. और खुद ना जाए, अपने बच्चों को भी उस कमरे में बिठा दें, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे हैं, ज्ञान नहीं समझ में आता, रुचि नहीं है, मेडिटेशन भी करनी नहीं आती है. आप उनको बोलो बस कमरे में बैठ जाओ 5 मिनट, आते हैं. इट्स लाइक ऑक्सीजन रूम. हवा दूषित हो तो अलग अलग कमरे बने होते हैं जहां जाके ऑक्सीजन लिया जाता है. बच्चों को अगर हम मेडिटेशन रूम में बिठाएं, उनको कुछ नहीं करना है, उनको एटलीस्ट हाई वाइब्रेशन मिलती जा रही है, छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंज. फिर सारा दिन में हर घंटे के बाद 1 मिनट, हर घंटे के बाद 1 मिनट, जो सुबह सुना पढ़ा लिया उसमें से एक थॉट लिया, उसको रोज हर घंटे के बाद 1 मिनट उसको वापस रिवाइज किया, उच्चारण किया. फिर रात को सोने से पहले फिर कुछ नेगेटिव सुनना पढ़ना देखना नहीं. जो सुनते हैं पढ़ते हैं देखते हैं वो हमारे मन में होता है, हमारे घर में होता है, फिर हमारी दुनिया में होने लग जाता है. सात्विक सुनना पढ़ना देखना, सात्विक खाना पीना. खाना पीना सात्विक, खाना पीना सात्विक, खाना पीना सात्विक, खाना पीना, खाना पीना. बैठे बैठे भी आ जाता है स्वीट. इसको कहते हैं बीमारी थोड़ी सी, विच इज ओके. लेकिन बीमारी किसी भी लेवल पे हो, जैसे ही दवा लेनी शुरू की, विच मीन्स ज्ञान अपने अंदर भरना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, बीमारी खत्म. अन्न का मन पर डायरेक्ट असर पड़ता है. अगर हमने भोजन वैसा खाया जिसके अंदर गुस्सा है, डर है, दर्द है, तो उसका हमारे मन के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा. यहां आप 3 दिन से सात्विक भोजन खा रहे हैं. सात्विक भोजन मतलब जो बनाया भी बहुत अच्छे मन की स्थिति में गया है, और फिर भोजन बनाने के बाद उसको मेडिटेशन रूम में बैठकर उस पर 5-10 मिनट मेडिटेशन भी करते हैं, ताकि वो भोजन बनाने वाले की कोई भी थोड़ी भी मन की स्थिति हो तो वो क्या हो जाएगी, साफ, क्लीन. तो ये हम घर पे भी कर सकते हैं. एक तो सात्विक भोजन, कोई भी ऐसी चीज अगर खा रहे हैं, पी रहे हैं जो हमारे मन और तन के लिए अच्छी नहीं, तो वो यहां से जाने से पहले स्वाहा करके जाएंगे. यहां ये एक चीज मांगी जाती है, ये एक चीज मांगी जाती है कि जो चीज आप 3-4 दिन से यहां नहीं ले रहे हैं, वो यहां से जाने से पहले प्रतिज्ञा करके जाए. यहां प्रतिज्ञा करने से इजी होता है करना, क्योंकि यहां बहुत लोग प्रतिज्ञा करके बहुत चीजें छोड़ गए हैं, तो फिर वो हवा में वो बात है, तो वो करने से फल ज्यादा मिलता है, मतलब इजियर हो जाता है, क्योंकि बहुतों ने किया है. इसलिए भी हम 4 दिन यहां आते हैं, ताकि हम प्रैक्टिस करें सात्विक लाइफस्टाइल. सात्विक लाइफस्टाइल है. मेडिटेशन 1 घंटे की नहीं होती है, इट्स अ मेडिटेटिव लाइफस्टाइल. स्पिरिचुअलिटी 1 घंटे की नहीं होती है, स्पिरिचुअलिटी इज अ लाइफस्टाइल. तो सात्विक भोजन, कोई और चीज खा पी रहे हैं तो जाने से पहले उसको स्वाहा करते हैं, और जब हम घर जाएं तो ये प्रैक्टिस करें कि हम परमात्मा की याद में मेडिटेशन की स्थिति में भोजन बनाएं. टीवी देखते देखते भोजन ना खाएं. अगर टीवी देखते देखते भोजन खाएंगे, अखबार पढ़ते पढ़ते भोजन खाएंगे, या फोन पर कुछ करते करते भोजन खाएंगे, तो वो सारी वाइब्रेशन भोजन में मिल जाती है. फिर जैसा अन्न वैसा मन. हमें सात्विक अन्न खाना है. सात्विक अन्न मतलब जिसकी वाइब्रेशन बहुत ऊंची है. तो अगर हम ये सब करेंगे तो धीरे धीरे हमारे घर के बच्चे भी करेंगे, क्योंकि वो घर का कल्चर बन जाएगा, जीवन जीने का तरीका. जैसे संस्कार वैसी संस्कृति वैसा संसार. मतलब यहां जो चल रहा है वो बहुत हाई एनर्जी का होना चाहिए. कोई ऐसी चीज या एक भी थॉट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहां जो थॉट आएगी उसका असर अन्न पर होगा, और अन्न का असर डायरेक्टली मन पर होगा. इसलिए बहुत ध्यान से. और भोजन खाने से पहले 10 सेकेंड्स रुक के परमात्मा को याद करके, उसको शुक्रिया करके, उसकी वाइब्रेशन खाने में डालकर, उसका शुद्धिकरण करके, जो संकल्प किया है कि जो अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं, वो हर बार रिपीट करके उसको और पक्का करके फिर भोजन खाएं. तो अगर हमें गुस्सा छोड़ना है तो हम थॉट क्या क्रिएट करेंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा. तो सुबह किया, हर 1 घंटे के बाद किया, रात को सोने से पहले किया, और खाने और पानी पीने के टाइम भी किया. क्योंकि मैंने अगर वो थॉट खाने में डाली, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, परमात्मा सर्वशक्तिवान शांति का सागर है, ये खाना कण कण शांति से भरपूर है, ये सब डालकर अगर खा लिया तो उसका असर तो मन पर डायरेक्टली होना ही है. छोटी छोटी चीजें हैं, जितना हम सेंटर पर आते जाते हैं ये छोटी छोटी चीजें हमारे को सीखने को मिलती हैं, और ये छोटी छोटी चीजों से फिर हमारा घर, हमारा ऑफिस दोनों बदल जाता है. तो हर घर में एक दिया चाहिए, हर ऑफिस में एक दिया चाहिए। तो हम यहां आए अपना दिया जलाने के लिए, अब वापस जाकर सबको दिया 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 करना है। आप सब में से कौन कौन सेंटर नहीं गए हैं कभी, पहली बार सीधा यहां आए हैं, सेंटर नहीं गए हैं, पहली बार यहां है ना, तो अब जाने के बाद करना है ये, है ना। जाने के बाद ये अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे फिट करना है कि हाफ एन आवर मेरा सुबह मेरे लिए निश्चित है। ये नहीं कभी सोचना कि टाइम नहीं है, दिया जलाना है ताकि दिया पूरा दिन सबको रोशनी दे। दिया में रोज घृत डालना पड़ता है, नहीं तो दिया तूफान आएगा तो दिया बुझ जाएगा। लेकिन अगर घी डालते रहेंगे ज्ञान का, तो तूफान आए भी तो भी दिया क्या होगा, चलता रहेगा। तो हमें हर रोज अपने आप को कहना है आई एम दैट दिया, मुझे सबको देने के लिए अपने अंदर रोज सुबह सुबह भरना है। फिर जब हम अपने अंदर चेंज लाएंगे तो हमें देख और भी अपने अंदर चेंज लाएंगे ही। रेडी हैं करने के लिए? तो लोग कहेंगे आबू गए और बदल के जादू हो गया। ऐसा वाला जादू तो अच्छा ही होता है, लोग डरते हैं वहां जाएंगे तो जादू हो जाएगा। जादू अच्छा वाला तो अच्छा ही है ना, जिसमें हमारा फायदा औरों का फायदा, ऐसा जादू तो सबको लगना चाहिए, है ना। चलिए 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम साइलेंस में उठेंगे, साइलेंस में भोजन के लिए चलेंगे और आज साइलेंस में भोजन खाते हैं। कर सकते हैं साइलेंस में भोजन? पावर, विल पावर, पावरफुल सोल। 20-25 मिनट लगेंगे उठना जाना, खाना खाना, कमरे में आना। ये 20-25 मिनट साइलेंस में रहकर अपनी ताकत को क्या करना है, बढ़ाना है, अपनी चेकिंग, मुझे क्या क्या चेंज करना है। और साइलेंस में रहकर वो सारी ज्ञान की बातों को याद करते हुए भोजन में भी वो ताकत क्या हो जाएगी, भर जाएगी। वो भोजन भोजन नहीं, प्रसाद है, ठीक है। तो 2 मिनट याद में बैठकर फिर साइलेंस में उठकर साइलेंस में भोजन पर चलेंगे।